हरे कृष्ण। तो आज हम आपसे कुछ ग्रंथों के वितरण के बारे में चर्चा करने वाले हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जो हमारे आंदोलन में विश्वभर में किया जाता है। श्रील प्रभुपाद जी की जो किताबें हैं, ग्रंथ हैं, उनका अनुवाद विश्व की सभी भाषाओं में हुआ है और इसका विश्वभर में वितरण हो रहा है। तो स्लाइड्स के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से ये हमारे परंपरा में ग्रंथों का वितरण कैसे शुरू हुआ और बाद में कैसे हमारी संस्था में कैसे विदेशों में ये ग्रंथों का प्रचार शुरू हुआ और आज भी लाखों और करोड़ों की तादाद में ग्रंथों का वितरण किया जा रहा है। तो इसका नाम है नेक्टर ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रभुपाद जी के ग्रंथ विश्व के 79 लैंग्वेजेस में उपलब्ध है। 89 इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में प्रभुपाद जी ग्रंथों का अनुवाद हो चुका है और उसका वितरण किया जा रहा है। प्रभुपाद जी किताबें 7 सेकंड में, हर 7 सेकंड में श्रील प्रभुपाद जी किताबों का वितरण हो रहा है विश्वभर में, हर 7 सेकंड में, मतलब हर 7 सेकंड के बाद एक किताब बन रही है, समझ लीजिए। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और प्रभुपाद ने अपने समय में एक ट्रस्ट खोला था जिसका नाम भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट है और उसके माध्यम से प्रभुपाद ने चाहा था कि विश्व के सभी भाषाओं में इन ग्रंथों का अनुवाद किया जाए और इसका प्रकाशन करके इसका वितरण किया जाए। तो ये प्रभुपाद जी के ग्रंथ पूरे विश्व भर में वितरित किए जाते हैं और ऐसे कई देश हैं जहाँ पे लोग अंग्रेजी भाषा भी नहीं जानते हैं, हिंदी भी नहीं जानते हैं, केवल अपनी ही भाषा जानते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़कर अपनी भाषा में वो भी भक्त बने हैं और भक्त बन रहे हैं और वहां पर भी प्रचार हो रहा है। देखिए कितनी सारी भाषाओं का यहाँ पर वर्णन किया गया है, इंटरनेशनल लैंग्वेजेस, विश्व के अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं, ऐसी ऐसी भाषाओं का आप नाम देखेंगे पहली बार आपने सुना होगा। ऐसी कितनी भाषाएं यहाँ पर लिखी है, देखिए आप में से कोई बता सकते हैं या पढ़ सकते हैं आप लोग, इसे कौन सी भाषा आपने कभी सुनी नहीं, आज तक नहीं सुना आपने, क्या बता सकते हैं कौन सी भाषा है जिसका नाम आज तक आपने सुना नहीं, बताइए कुछ तो बताइए। टाटर, ताजिक, सुना है भाषा? तो ऐसे देखिए कई ऐसी भाषा जिनका नाम उच्चारण करना भी बड़ा मुश्किल है, बोलना भी कठिन होता है, तो वो भाषा कितनी कठिन होगी। और वहां पर भी भक्त लोग जाकर वहां के भाषा में, उनकी भाषा में ग्रंथों का अनुवाद करके उसका वितरण कर रहे हैं और उसको पढ़कर क्या हो रहा है, भक्त बन रहे हैं। ये विदेशों में देखिए किस तरह से हमारे भक्त लोग प्रचार करते हैं। विदेशों में प्रचार करना बहुत ही कठिन कार्य है क्योंकि अभी खासकर दिसंबर के महीने में कई ऐसे देश हैं जहां पर बहुत ठंड पड़ती है, जैसे रशिया में, साइबेरिया में वहां तापमान -40 डिग्री से रहता है तापमान। आपने तो 3 डिग्री या 4 डिग्री सुना होगा यहाँ पर दिल्ली में, है ना, ज्यादा ज्यादा कम से कम लेकिन वहां पर 0 से नीचे जाता है, 0 से नीचे जाता है तापमान, -40 डिग्री टेम्परेचर। उसमें क्या, अगर आप मुंह से कुछ थूकेंगे भी तो जमीन तक पहुंचने पर वो बर्फ बन जाता है। तो इसलिए पूरा शरीर ढके वो लोग जाते हैं वहां, और वहां ऐसे ऐसे देश में भी जाके भक्त लोग क्या कर रहे हैं, वो ग्रंथों का वितरण कर रहे हैं। और बड़ा कई ऐसे देश है जहां पर तो आप इसका प्रचार भी नहीं कर सकते भगवद्गीता का, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान से आप 2 भक्त हमारे आए हैं, तो कैसे वो लोग प्रचार करते हैं, बड़ा कठिन है वहां प्रचार करना, वहां पर तो बाहर आप जा ही नहीं सकते भगवद्गीता लेकर। और वहां पे जैसे चाइना में भी ऐसे ही है, चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है और कई ऐसी कंट्रीज है जहां पे आप इसका बिल्कुल भी प्रचार नहीं कर सकते, इलीगल माना जाता है इसको। कोई भी ऐसे एक्टिविटी हो जिसमें आप भगवद्गीता बांट रहे होंगे, ऐसे कार्य को जो है वो इलीगल बताते हैं, गैर कानूनी बताते हैं, और पुलिस आती है अगर उनको लगता है कि 4-5 अगर लोग हैं वो एक साथ मिलकर कीर्तन भी कर रहे हैं, सुनाई देता है, और मान लीजिए 4-5 भक्त लोग मिलकर कीर्तन कर रहे हैं अपने घर में बैठे हुए, अगर पुलिस को पता चल जाए कि ये लोग कीर्तन कर रहे हैं, करताल की आवाज आ रही है, तो तुरंत पुलिस आ जाएगी, बहुत स्ट्रिक्ट है वहां पर वो लोग। तो इस लेकिन हमारे देश में देखिए, हमारे देश में अभी भी आज के समय, हालांकि काफी वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है और विनिश का काफी प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी बहुत आसान है मंदिर जाना, ग्रंथों को बांटना, रथ यात्रा करना, जन्माष्टमी बनाना, आज भी आप कर सकते हैं खुलेआम। नहीं, आज ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट की तरफ से प्रतिबंध लगा दिया हो कि आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, ये सारे मंदिर बंद हो गए हैं। तो अभी भी इस देश में, हालांकि इतना वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि कई जगह पर प्रचार चल रहा है। और अभी विश्व में सबसे ज्यादा ग्रंथों का वितरण तो आपके इस देश में हो रहा है, भारत में हो रहा है। प्रभुपाद जब शुरू किए थे आंदोलन, तो प्रभुपाद यहां पे 40 साल लगभग उन्होंने प्रयास किया, लेकिन प्रभुपाद को कोई भी नहीं सुन रहा था, और पूरे 40 साल में प्रभुपाद ने केवल एक ही शिष्य बनाया संस्था को शुरू करने से पहले। भारत में प्रचार हो ही नहीं पा रहा था, तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं विदेश जाऊंगा, और जब ये भारतीय लोग अमेरिकन और यूरोपियंस को देखेंगे भक्त के रूप में, तब ये इस आंदोलन को अपनाएंगे। तो इसलिए आप देखते, अब हम देखते हैं कि प्रभुपाद के इस प्रयास से आज इस देश में सबसे ज्यादा प्रचार हो रहा है। अभी लगभग 30 मंदिरों का निर्माण हो रहा है पूरे भारतवर्ष में। हाल ही में गोदावरी नदी के तट पर दक्षिण भारत में मंदिर का, बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण और उद्घाटन भी हुआ, और उसके बाद एक अनंतपुर नाम की जगह है, वहां पर भी नदी के तट पर एक मंदिर का निर्माण हुआ है। दक्षिण भारत में बहुत सारे मंदिर बन रहे हैं, तो पूरे भारत में करीब 30 मंदिरों का निर्माण हो रहा है। देखिए यहाँ पर इतिहास बता रहे हैं कि कैसे ये आंदोलन शुरू हुआ, ये आंदोलन कैसे शुरू हुआ। ये आंदोलन शुरू हुआ था आज से 500 साल पहले, लगभग 500 साल कह लीजिए या उससे भी कम, 450 साल पहले या लगभग 500 साल पहले। ये मतलब संकीर्तन जो पहली बार पुस्तक वितरण शुरू हुआ, वृंदावन से प्रारंभ हुआ। वृंदावन में हमारे जो गोस्वामी लोग रहते थे, जिन्होंने कृष्ण की लीला स्थलियों का पता किया, मंदिरों का निर्माण कराया, ब्रज में जाकर जितने भी लीला स्थली देखते हैं, आप देख पाते हैं जाकर, ये सब इन गोस्वामियों की वजह से है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, इन सब के वजह से आज वृंदावन में जाकर आप लीला थलियों का दर्शन कर पा रहे हैं। ये तो पूरा जंगल था, पूरा सारी लीला थलियां लुप्त हो गई थी, कोई नहीं जानता था कि सेवा कुंज कहाँ है, निधि वन कहाँ है, कोई नहीं जानता था। कालिया दमन की लीला कहाँ की विवाद ने, तो इन सब ने पता लगाया, तो ये सब चले गए। श्री राजीव गोस्वामी आखिरी थे, सबसे छोटे थे, उनको पूरे वैश्य समाज का प्रमुख बनाया गया, और वृंदावन में रहते थे। वृंदावन में जब रहते थे, उन्होंने वहां पर श्री रूप गोस्वामी की सेवा की, जो उस समय के बहुत बड़े वैश्य आचार्य थे। तो रूप गोस्वामी ने ही उनको आगे जाने से पहले पूरे वैश्य समाज का प्रमुख बनाया था। तो श्री राजीव गोस्वामी ने कई ग्रंथ लिखे, उन्होंने भी स्वयं लगभग 5 लाख श्लोक लिखे हैं भगवान कृष्ण के गुणगान में, उनकी लीलाओं के ऊपर, सिद्धांत के ऊपर लगभग 5 लाख श्लोक, आप सोच भी नहीं सकते हैं। वेद व्यास जी जो है, व्यासदेव जी ने 18 पुराण में लगभग 5 लाख श्लोक है, लेकिन सारे पुराण केवल भगवान कृष्ण का गुणगान नहीं करते, लेकिन श्री जी गोस्वामी ने जो लिखा लगभग 5 लाख श्लोक, वो लगभग सारे 5 लाख श्लोक जो है भगवान कृष्ण के गुणगान में है। उन्होंने व्याकरण की भी एक किताब लिखी, जिसमें भी वो व्याकरण के माध्यम से कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं, संस्कृत व्याकरण के माध्यम से। तो बहुत बड़े विद्वान थे संस्कृत के, और बहुत बड़े वैष्णव थे। तो ये 3 वैष्णव आए उनके आश्रय में उनसे शिक्षा ग्रहण करने, जिनका नाम यहाँ पे लिखा है, श्यामानंद प्रभु, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य। कल श्रीनिवास आचार्य का हमने तिरुभाव बनाया था, कल के दिन ही उन्होंने शरीर का त्याग किया था वृंदावन में। तो ये 3 महान आचार्य जो है ये वृंदावन में आए, और इन्होंने श्रील जी गोस्वामी से शिक्षा ग्रहण की। श्रील जी गोस्वामी से शिक्षा ग्रहण करके जी गोस्वामी ने इनको आदेश दिया कि आप ये जो गोस्वामियों के जो ग्रंथ है, इसको आप ले जाएं और पूरे बंगाल और उड़ीसा में इसका प्रचार प्रसार करें। उन दिनों टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई प्रिंटर्स नहीं थे, पब्लिशर्स नहीं थे, आज अगर कोई भी किताब चाहिए, अगर आज आप ऑर्डर देते हैं 10,000 गीता चाहिए तो 2 दिन के अंदर आपके पास गीता आ जाएगी, है ना। क्योंकि आजकल सारा कुछ टेक्नोलॉजी इतना एडवांस्ड हो गया है कि आपको कभी भी कितनी भी क्वांटिटी में किताबें चाहिए बहुत जल्द जल्द समय मिल जाते हैं। जैसे अभी आपको शायद आश्चर्य होगा सुन के, इस बार दिसंबर के महीने में जो हम लोग पुस्तक वितरण करते हैं उसके लिए बॉम्बे में भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट हमारा है, उसे लगभग 10.5 लाख गीता छापी है, 10.5 लाख गीता छापी है सिर्फ भारतवर्ष में बांटने के लिए। सुशांत सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में छाप पाते हैं टेक्नोलॉजी की सहायता से। तो टेक्नोलॉजी का सदुपयोग हो सकता है कहने का मतलब ये। लेकिन उन दिनों क्या होता था कि ब्राह्मणों को जो पंडित लोग थे उनको सेवा में लगाना पड़ता था और वो लोग इन ग्रंथों की नकल करते थे, किताबों को नकल करके उसके बाद फिर आगे किसी को मिलता था, यानी कि हाथ से दोबारा लिखना पड़ता था। कितना कठिन कार्य है। और हमने जैसे बताया श्रील जी गोस्वामी ने इतने सारे ग्रंथ लिखे और उनकी संस्कृत इतनी कठिन है, अगर आज भी आप पढ़ते हैं तो उसको नकल करना भी बहुत मुश्किल है। तो ऐसे ब्राह्मण बड़े ही चुनिंदा होते थे, कुछ ही मात्रा में होते थे, तो ऐसे ब्राह्मणों को सेवा में लगाना पड़ता था। तो ये लोग ग्रंथ ले जा रहे थे बैलगाड़ी में रखे, श्रीनिवास आचार्य बैलगाड़ी में रखे ग्रंथ ले जा रहे थे। ये तीनों आचार्य बंगाल और उड़ीसा की तरफ जा रहे थे। श्यामानंद प्रभु ने उड़ीसा में प्रचार किया, बाकी और नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामा क्या नाम उनका श्रीनिवास आचार्य, इन्होंने भी बंगाल और उड़ीसा में प्रचार किया। तो ये लोग जब जा रहे थे रास्ते में एक गांव आया और विश्वपुर नाम का जिला था और उसके राजा थे वीर हमीर। ये जो राजा क्या करता था, रात्रि के समय अपने सैनिकों को भेजता था जो डाकू के रूप में आते थे और यात्रियों से धन लूटते थे। तो ये खजाना समझकर इन्होंने सोचा कि इसे बहुत सारा धन होगा बैलगाड़ी में, हीरे ज्वारात होंगे क्योंकि ढका हुआ था सारा। तो इन्होंने क्या किया, जब ये विश्राम कर रहे थे रात को तो ये सारे ग्रंथों को चोरी करके ले गए, ये समझ करके उसमें बहुत पैसा है। वास्तव में असली खजाना तो था ही वो ग्रंथों का खजाना। तो ये जो ग्रंथ ले गए तो ये तीनों जो वैश्य थे आचार्य लोग ये बहुत दुखी हुए और उन्होंने सोचा कि हम क्या जवाब देंगे श्रील जी को स्वामी को, जो हमसे पूछेंगे कि वो किताबों का क्या हुआ, कितने कष्ट से कठिनाई से रात को बैठ बैठ के उन्होंने ग्रंथों की रचना की है और हमारे हाथ से ये गुम हो गए, अब दोबारा कैसे हम लोग छापेंगे, सॉफ्ट कॉपी तो है नहीं, है ना। आजकल किताब भी घूम जाए तो आपके पास सॉफ्ट कॉपी रहता है उसका, तो दोबारा छाप सकते हैं आप, किताब भी घूम जाए कोई दिक्कत नहीं, है ना। लेकिन उस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं था कंप्यूटर का, तो दोबारा कैसे, दोबारा लिखना पड़ेगा फिर, यानी कि दोबारा लिखना पड़ेगा, तो ये तो बहुत ही कठिन कार्य होगा। तो बहुत चिंतित हुए। तो श्रीनिवास आचार्य ने नरोत्तम दास ठाकुर श्यामानंद प्रभु को कहा कि आप चिंता ना करें, आप आगे जाएं प्रचार के लिए और पीछे जो है मैं प्रयास करता हूँ ढूंढने का, पीछे मैं प्रयास करता हूँ किस तरह से इसको पता लगाया जाए। तो ये गए और श्रीनिवास आचार्य वहाँ पर एक सोचा कि राजा के पास जाता हूँ और राजा से सहायता लेता हूँ, राजा शायद मदद कर दे। तो उसी राजा के पास गए, उस समय उनके दरबार में भागवत कथा चल रही थी। ये राजा दोपहर के समय यानी दिन के समय वो भागवत कराता था, श्रीमद् भागवत की कथा कराता था और रात के समय डके थे, तो इसलिए किसी को उनके ऊपर शक ही नहीं होता था, सब सोचते थे बड़ा धार्मिक है, साधु संत है। तो लेकिन जब श्रीनिवास आचार्य ने कई वहां पर जो विद्वान आए थे तथाकथित उनके टीकाओं को सुना, व्याख्या को सुना, तो श्रीनिवास आचार्य को बहुत खराब लगा। उन्होंने कहा है कि ये सब व्याख्या गलत कर रहे हैं। तो राजा बड़ा हैरान हो गया, बोलते हैं तो सब बड़े बड़े विद्वान है, अगर आप इतना जानते तो आप बताओ इसका क्या अर्थ है। श्रीनिवास आचार्य को नहीं पहचान पा रहे थे कि उनका हाल बड़ा खराब था क्योंकि काफी दिनों से भटक रहे थे वो और फटे पुराने कपड़े थे उनके। तो श्रीनिवास आचार्य से जब बोला तो जब उन्होंने शुरू किया व्याख्या करना शुरू किया तो राजा दंग हो गया और राजा इतना प्रभावित हुआ तो राजा ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप इधर रहे महल में हमारे साथ और प्रत्येक दिन आप क्या करें, कथा सुनाएं। तो श्रीनिवास आचार्य ने सोचा कि ये अच्छी बात है, यह तो बहुत अच्छा विचार है, क्योंकि मैं यहाँ रहकर के आवश्यकता ग्रंथों की तलाश करता हूँ। अगर राजा खुश हो गया तो मैं ये ग्रंथ दिलाने में सहायता कर पाए। तो श्रीनिवास आचार्य रोज जो है क्या करते थे, कथा करते थे। कथा के प्रभाव से, उनके संग के प्रभाव से राजा का हृदय बदल गया। राजा ने कहा, आप बताओ आप, आपको क्या चाहिए, मैं आपको कुछ भी देने के लिए तैयार हूं भेंट। तो श्रीनिवास आचार्य ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमारा एक खजाना था बहुत, उसमें बहुत सारे ग्रंथ थे और रात को कुछ डाकू आए और उसको लेके चले गए और मैं बहुत चिंतित हूँ और मैं, हम लोग क्या जवाब देंगे हम जानते नहीं। वृंदावन से हम लोग आए थे, बंगाल उड़ीसा में प्रचार करने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में घटना हो गई। तो राजा ने कहा ठीक है, आप चिंता मत करो, मैं पता लगाता हूँ। राजा को पता चल गया कि हमारे सैनिक है चोरी की है। तो सैनिकों को बुलाया, उन्हें कहा कि आप लोगों ने कुछ ग्रंथ प्राप्त किए थे, किताबें। उन्होंने कहा नहीं, कोई किताब तो नहीं मिला, रात्रि को कोई डकैती नहीं की। बोलते हाँ, वो एक बैलगाड़ी आ रही थी, कुछ दो तीन लोग थे वो तो विश्राम कर रहे थे, हमने लेके आ गए, अभी हमारे खजाने में होगा। बोलते नहीं, जरा देखना पड़ेगा, उसमें हो सकता है कुछ और हो। तो जब वो गए देखने के लिए और वहां पे देखा, उस गाड़ी में देखा, वो कपड़े से ढका हुआ था, वो कपड़ा निकाल के देखा, उसमें सारे ग्रंथ ही ग्रंथ थे। तो उन्होंने कहा कि ये तो सारे ग्रंथ है, ये कोई हीरे जवाहरात थोड़ा ना है, आप लोग देख के नहीं लाते क्या? पहले देख तो लो, पैसे है या धन है या नहीं है, ऐसे उठा के लिया कुछ भी। तो उसके बाद फिर श्रीनिवास आचार्य को बुलाया, दिखाया कि मैंने आपका ये पता कर लिया है कहाँ पे था। तो उन्हें क्षमा भी मांगी और श्रीनिवास आचार्य फिर उस राजा को दीक्षा भी दी, शिष्य बन गया श्रीनिवास आचार्य का। और पूरे गांव में काफी हजारों की तादाद पे श्रीनिवास आचार्य के शिष्य भी बने। तो इस प्रकार वहां से प्रचार शुरू हुआ था। तो पीछे जाए तो उसलिए, तो ये इतिहास है, यानी कि हम ये बताना चाह रहे थे कि यहां से जो है हमारा जो है पुस्तक वितरण शुरू हुआ, यानी ग्रंथों का जो वितरण का कार्य शिल जी गोस्वामी ने के कहने पर इन तीन महाराचार्यों ने शुरू किया था। लेकिन आज की तरह नहीं, बहुत समय तो हमने जैसे बताया कि सब कुछ नकल करना पड़ता था। फिर उसके बाद कई सैकड़ों वर्षों के बाद हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों में से महान आचार्य हुए हैं। आप में से कितने लोग जानते हैं इनको, ये चित्र दिखाइए, आप में से जानते हैं ये कौन है, हाथ खड़ा करके बताइए कौन जानता है इनको। आप लोग यहाँ बताइए, नहीं प्रभुपाद के गुरु नहीं है, नाम क्या इनका, भक्तिराव ठाकुर। तो भक्तिराव ठाकुर जो है वो शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर के पिता थे और भक्तिराव ठाकुर गृहस्थ आश्रम में थे। भक्ति ठाकुर के 13 संतानें थी और वो जगन्नाथपुरी उड़ीसा में चीफ मजिस्ट्रेट थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में के समय, और केवल 3 घंटा विश्राम करते थे 24 घंटे में केवल बस, और 8 बजे सोने जाते थे, विश्राम करने जाते थे, और 10 बजे उठ जाते थे रात को ही, और रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे तक ग्रंथ लिखते थे, किताब लिखते थे, पूरी रात किताब लिखते थे। फिर 4 बजे से 7 बजे तक अपना जप करते थे, उसके बाद कुछ लोगों से मिलना होता था, चिट्ठियों का जवाब देना पड़ता था, फिर वो कोर्ट जाते थे सुबह प्रसाद वगैरह लेके, फिर वापस आते थे 1 बजे और 1 से 2 थोड़ा विश्राम करके प्रसाद ग्रहण करके फिर कोर्ट जाते थे, फिर शाम को 5 बजे आते थे, फिर शाम को भी कुछ ग्रंथों का अनुवाद करते थे संस्कृत भाषा से और कुछ लोगों से मिलते थे। उनके पास हमेशा जेब में स्टॉप वॉच होता था, और इसलिए क्योंकि उन्होंने पूरे 24 घंटे को उन्होंने बांटा हुआ था कि इस समय ये करना है मुझे, इस समय ये करना है। इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी भक्तिराव ठाकुर को सप्तम गोस्वामी बताया गया है, और ठाकुर भक्तिराव जो है पहले आचार्य हैं जिन्होंने हमारे जो ग्रंथ है चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं हैं उनको किताब के रूप में छपाया, क्योंकि उस समय ये टेक्नोलॉजी आ गई थी, किताबें छपना शुरू हो गई थी। 1896 में भक्तिराव ठाकुर ने एक ग्रंथ भेजे कुछ विश्व के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में, उसमें से एक विश्वविद्यालय है मैकगिल यूनिवर्सिटी मॉन्ट्रियल में, लिखा है यहां पर 1896 में। तो वहां पे एक बार प्रभुपाद जी के शिष्य गए ग्रंथ बांटने के लिए, तो उनको ये भक्तिवर ठाकुर की किताब मिले, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य हिज लाइफ एंड प्रिजर्व्स, महाप्रभु की शिक्षा उनका जीवन और चरित्र। तो ये किताब उनको मिली, उन्होंने आगे प्रभुपाद को बताया कि प्रभुपाद हमें ये किताब मिली है भक्तिवर ठाकुर की, और 1896 में ये किताब आई थी यहां पर मॉन्ट्रियल में। तो प्रभुपाल ने कहा कि हाँ, उसी साल मेरा जन्म भी हुआ था 1896, प्रभुपाद का जन्म भी 1896 में हुआ था, और उसी साल ये भक्तिवर ठाकुर ने इन किताबों को भेजना शुरू किया था। तो भक्तिवर ठाकुर चाहते थे कि महाप्रभु की शिक्षाओं को पूरे पृथ्वी में पहुंचाया जाए, और भक्तिवर ठाकुर ने 1886 में भविष्यवाणी की कि हमारे परंपरा में एक बहुत बड़ा भक्त आएगा जो पूरे विश्व भर में इसका महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार करेगा 1886 में। और प्रभुपाद हम जानते हैं कि प्रभुपाद के ऊपर उन्होंने प्रभुपाद के लिए कहा। तो प्रभुपाद ने एक बार प्रवचन बताया कि वास्तव में मैं नहीं उस आंदोलन का संस्थापक आचार्य, इस आंदोलन के संस्थापक असली संस्थापक तो भक्तिवर ठाकुर है, क्योंकि इन्होंने महाप्रभु का आंदोलन वास्तव में शुरू करवाया। क्योंकि भक्तिवर ठाकुर के आने से पहले भी क्या हुआ था, महाप्रभु की शिक्षाएं लुप्त हो गई थी, महाप्रभु की लीला स्थलियां लुप्त हो गई थी मायापुर नवदीप धाम में। तो भक्तिवर ठाकुर ने यह सब पता लगाया और इन ग्रंथों की रचना की। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान पता लगाने वाले हैं भक्तिवर ठाकुर, और कई ऐसे लीला स्थलियों का पता लगाया। तो भक्तिवर ठाकुर का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसलिए ये भक्तिवर ठाकुर की प्रेरणा से चैतन्य चरितामृत ग्रंथ आप जानते हैं जो प्रभुपाद ने अंग्रेजी में अनुवाद किया है, ये उनको 8 साल लगे भक्तिवर ठाकुर को इस ग्रंथ को प्राप्त करने के लिए, सिर्फ ये ग्रंथ मिल नहीं रहा था। तो 8 साल संघर्ष करने के बाद भक्तिवर ठाकुर की किताब मिली, और फिर उन्होंने क्या किया, उसका उसके ऊपर व्याख्या लिखी, टीका दी, और भक्तिवर ठाकुर ने किताब को छपाया। तो इस तरह से देखते हैं कि भक्तिवर ठाकुर का बहुत बड़ा योगदान है ग्रंथों के प्रकाशन में और प्रचार में। और उनके सुपुत्र भक्तिविनोद ठाकुर ने भी प्रेरणा प्रार्थना की थी कि आप मुझे ऐसी संतान दे कि जो इस महाप्रभु के आंदोलन को शुरू करे। तो चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को शुरू किया था शिला भक्ति सिद्धांत सिंह ठाकुर ने एक संस्था के रूप में। भक्ति सिद्धांत सिंह ठाकुर, उन्होंने लगभग 10 साल श्रीधाम मायापुर में, जहां महाप्रभु का जन्मस्थान है उसके पास, उन्होंने वहां पर बहुत गहरी तपस्या की, और लगभग 10 साल उन्होंने लगातार वहां पर महामंत्र का जप किया, एक कुटिया बना के प्रत्येक दिन 3 लाख नाम लेके 192 माला। हमें से 16 माला करते हैं कुछ भक्त, है ना, कुछ लोग 4 माला करते हैं, कुछ 6 माला करते हैं। तो इन्होंने बात क्या लिया था कि 192 माला करेंगे, 10 करोड़ नाम इन्होंने लेने का शपथ लिया श्रीधाम मायापुर में, और लगभग 10 सालों में उन्होंने अपना यह व्रत पूरा किया 10 करोड़ नाम। और 1918 में उनको प्रेरणा मिली, प्रभुपाद ने एक लेक्चर में बताया है कि चेते मेरे गुरु महाराज पंच तत्व के मध्य में संकीर्तन में भाग ले रहे थे, और एक दिन क्या हुआ, उनको महापुरुष से प्रेरणा मिली और उस पंच तत्व के सानिध्य को छोड़कर वो कलकत्ता गए, और उन्होंने वहां पर जाकर महापुरुष का आंदोलन शुरू किया 1918 में। तो शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर पहले से महान आचार्य है, प्रचारक है, जिन्होंने पहली बार आकर एक बहुत बड़ी क्रांति लेके आए, और उन्होंने वर्णाश्रम धर्म का स्थापना, वर्णाश्रम की स्थापना करने के लिए पूरा प्रयास किया। उन्होंने कहा जब तक वर्णाश्रम धर्म को स्थापित नहीं करेंगे, लोग कृष्ण भक्ति को इतनी आसानी से नहीं स्वीकार कर पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने फिर संन्यास आश्रम शुरू किया, फिर लोगों ने उन्होंने ब्रह्मचारी आश्रम शुरू किया, और फिर गृहस्थ भक्तों को भी बाहर से सेवा में लगाना शुरू किया। इस प्रकार ये आंदोलन शुरू हुआ। और फिर उन्होंने क्या किया, अपने पिता के प्रेरणा से उन्होंने ग्रंथों की छपाई करना शुरू कर दी, प्रकाशन करना शुरू कर दिया। और उन्होंने क्या किया, कई मंदिरों में उन्होंने क्या किया, एक प्रिंटिंग प्रेस बनाया मंदिर के अंदर ही। और कहां पर बनाते थे वो, जो डीटीस होते हैं, विग्रह है, विग्रह के बिल्कुल बहुत करीब। तो किसी ने पूछा कि ये आपने इतने पास में नजदीक में प्रिंटिंग प्रेस रखा है तो बहुत आवाज आएगी यहां पर, डीटीस परेशान होंगे, है ना, बार में खटखट खट करते हैं। पुराने जमाने की जो मशीन है वो आवाज करती थी बहुत, ना आपने देखा, बहुत आवाज करती खट 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 करके, तो ऐसी उसमें आवाज आती थी। तो उन्होंने कहा कि ये तो बृहत मृदंग है, ये जो मृदंग आप बजाते हैं कीर्तन के दौरान, इसकी आवाज तो कुछ दूर तक जाती है, लेकिन जो ये ग्रंथ है, किताबें हैं, ये इसको बृहत मृदंग बताया उन्होंने, ये बहुत बड़ा मृदंग है, इसकी आवाज तो हजारों मील दूर जाएगी। मतलब जब जब आवाज आती है प्रिंटिंग प्रेस पे, वो आवाज क्या बताती है कि ये बहुत दूर तक जाएगी। तो इसलिए ये उन्होंने स्थापना की प्रिंटिंग प्रेस की, और बहुत सारे ग्रंथों के ऊपर उन्होंने अपनी व्याख्या भी दी, ग्रंथों का प्रकाशन भी किया, और पूरे भारतवर्ष में उन्होंने 64 मंदिर बनाए, पूरे भारतवर्ष में 60 बनाए, और 4 विदेश में, बर्मा में, और एक शायद ढाका में, और फिर एक शायद जर्मनी में, एक शायद लंदन में, शायद 3 या 4, तो 4 ऐसे मंदिर बाहर बनाए थे। लेकिन उनके जो और शिष्य थे इतने सफल नहीं हुए, लेकिन प्रभुपाद जो पहली बार मिले 1922 में, तो उनको देखकर, पहले दिन देखकर कहा कि आप तो पढ़े लिखे युवक हो, क्यों नहीं आप पाश्चात्य जगत में अंग्रेजी भाषा में क्यों नहीं आप प्रचार करते। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने जब ये कहा तो प्रभुपाद ने कहा कि अभी तो हमारा देश इन्हीं के अधीन है, अंग्रेजों के अधीन है, हमें कौन सुनेगा। तो उन्होंने कहा कि देखो, राजनेता बदल जाएंगे लेकिन राजनीति नहीं बदलेगी, राजनीति तो चलती रहेगी, लेकिन कृष्ण भावना का जो आंदोलन है, इसी देश या जाति या राजनीति के ऊपर निर्भर नहीं है, इसका प्रचार प्रसार करना ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, ये सबसे बड़ी इमरजेंसी आपातकालीन है। तो इस तरह से प्रभुपाद को ऐसा लगा कि पहली बार उनके जीवन में किसी ने उनको हराया है बातों में, इससे पहले वो हमेशा लीडर थे, अपने कॉलेज में भी प्रभुपाद हमेशा लीडर थे, उनको पहली बार लगा कि किसी ने मुझे बातों में हराया है, और फिर उन्होंने हृदय से उनको गुरु स्वीकार किया, और 11 साल के बाद उन्होंने उसे दीक्षा भी ग्रहण की। प्रभुपाद लगभग 43 साल प्रभुपाद प्रयास कर रहे थे भारत में प्रचार करने के लिए, जैसे हमने बताया। इसलिए राणापुर में 1935 में श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने, प्रभुपाद जब वहां पर ब्रजमंडल परिक्रमा के लिए गए थे, तो राधाकुंड के तट पर श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा कि जब भी तुम्हें धन मिले तो क्या करना, तुम ग्रंथ छापना। इसमें पूरा आया नहीं ये सेंटेंस, कि जब भी तुम्हें धन प्राप्त हो तुम किताबें छापना। तो प्रभुपाद को एक, उन्होंने कागज में एक मृदंग बना के दिखाया प्रभुपाद को, मतलब ये है बृहत मृदंग, ये मृदंग है, लेकिन ग्रंथों का जब प्रकाशन करते हैं हम लोग, उसको बृहत मृदंग कहा जाता है। तो जब भी तुम्हें पैसे मिले ग्रंथों को छापना। तो प्रभुपाद ने इन बातों को इतनी गहराई से लिया, और भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने आखिरी दिनों में भी ग्रंथों के प्रचार के लिए, नाम हट कार्यक्रम के लिए बहुत जोर दिया था। कुछ आखिरी जो उनके उपदेश थे उसमें यह भी था, आगे चलिए, श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर का ये बहुत ही जो प्रचलित जो उनका एक भजन है वैष्णव के, कि किस तरह के वैष्णव हो आप, उन्होंने एक भजन लिखा, उसमें उन्होंने ये पंक्ति लिखी, प्राण आछे तार से होते प्रचार, कि मतलब क्या है, प्रचार कौन कर सकता है, जो जीवित है, मरा हुआ व्यक्ति प्रचार नहीं कर सकता है। यानी कहने का अर्थ क्या है, यानी कि अगर हम जीवित है, हमारी सांस चल रही है, तो हमें प्रचार करना चाहिए महाप्रभु के जो संदेश को, नगर नगर गांव गांव तक पहुंचाना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम जीवित होते हुए मरे हुए हैं। तो इसलिए प्रचार ही वास्तव में हमारा असली प्राण है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण का आदेश संदेश था, आगे चलिए। और फिर प्रभुपाद ने भी काफी जोर दिया, जैसे प्रभुपाद ने बृहत मृदंग के बारे में बताया है, किस तरह से ये बृहत मृदंग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, शिक्षाएं जो है प्रभुपाद की। ये प्रभुपाद जी ग्रंथ है, जैसे हमने बताया पूरे विश्व के सभी भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है, और विदेशों में कैसे विदेशी भक्त भी लोग कैसे कठिनाई सहन करते हुए इन ग्रंथों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पांच रात्रि विधि और भागवत विधि। इसका अर्थ यह है कि जो विग्रह की सेवा है, दीक्षा लेना है, यज्ञ करना है, ये सब पांच रात्रि की विधि में आता है। और कथा करना, श्रवण कीर्तन करना, ग्रंथों का प्रकाशन करना, प्रचार करना, ये सब क्या है? भागवत विधि है। तो भागवत विधि को सहारा देता है पांच रात्रि विधि। भागवत विधि जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें ग्रंथों का प्रचार होता है, प्रसार होता है। तो प्रभुपाद ने इस बात पर बहुत जोर दिया। उनके गुरु महाराज ने जब अपने संस्था में एक लोगो बनाया था, जैसे हमारे इस्कॉन का लोगो है कमल फूल के रूप में, उन्होंने क्या किया, रेलवे की पटरी दिखाई, रेलवे की लाइन दिखा, रेलवे लाइन दिखा। उन्होंने कहा जिस तरह से रेलवे लाइन कैसा होता है, आपने सामने होता है ना, इसी तरह से भागवत विधि और पांच रात्रि विधि भी साथ साथ चलती है। यानी कि विग्रह की सेवा भी चल रही है, साथ में भागवत कथा भी चल रही है। इसलिए भगवान का चित्र भी रखते हैं, साथ में कथा भी करते हैं। एक बार प्रभुपाद एक पंडाल में प्रवचन दे रहे थे, तो क्या हुआ कि माइक जो है बार बार गिर रहा था, जैसे आवाज आ रही ना इसमें अभी, तो उस समय क्या हो रहा था कि माइक गिर रहा था बार बार, और कभी भक्त ऐसे कर रहे हैं, कभी वैसे कर रहे हैं, है ना, वो माइक ठीक ही नहीं हो रहा। तो प्रभुपाद को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, एक हो क्या रहा है। तो प्रभुपाद पास में एक गणित भक्त थे, वो ब्राह्मण दीक्षा लिए हुए, जने पहने हुए थे। तो प्रभुपाद ने कहा अपना जने उतार, प्रभुपाद ने जने उतरवाया और प्रभुपाद ने क्या किया, उसी से माइक को बांध दिया। फिर बाद में प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद ये तो स्वयं गायत्री करते हैं आप, ये आपने माइक के लिए यूज किया? तो प्रभुपाद ने कहा हाँ, ये जो पांच रात्रि विधि है ये भागवत विधि को सहारा देने के लिए है, प्रचार के लिए है, ये बात को जोर देने के लिए प्रभुपाद ने ऐसे किया। तो इस तरह जो प्रभुपाद के, ऑफकोर्स इसको हम नकल नहीं कर सकते, लेकिन कहने का अर्थ है कि प्रभुपाद ने ग्रंथों के प्रचार प्रसार में सबसे ज्यादा जोर दिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग जो भी सोचे ऊंचा सोचे। प्रभुपाद ने जो भी कार्य किया बड़ा कार्य किया, छोटा कार्य प्रभुपाद ने कभी नहीं किया, है ना। प्रभुपाद ने क्या सोचा कि विश्व भर में प्रचार करूंगा। हम सोचते हैं हम गढ़ी में प्रचार करेंगे, ईस्ट कैलाश में प्रचार करेंगे, या संत नगर मंदिर में आगे प्रचार करेंगे, है ना, हम इतना ही सोच पाते हैं। लेकिन प्रभुपाद का क्या विचार था, पूरे विश्व भर में मुझे ये प्रचार करना है। और प्रभुपाद ने 11 साल में कर दिया। 40 साल भारत में संघर्ष किया, लेकिन विदेश में जब गए तो एक साल में संस्था की स्थापना कर दी और पूरे विश्वभर में प्रचार करा दिया। और जो समर्पण शिष्य है पूरे विश्वभर में जाकर उन्होंने अलग अलग केंद्र खोले। और अपने समय में प्रभुपाद ने 108 से ज्यादा विग्रह स्थापित किए, ग्रंथों का प्रकाशन किया। प्रभुपाद रात को 10 बजे करीब विश्राम करते, कहीं भी जाते। जैसे मान लीजिए आप यहां रात को फ्लाइट में जा रहे हैं और अगर अमेरिका पहुंचेंगे फिर भी वहां रात ही हो रही होगी, है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, रात को नींद नहीं आएगी आपको, सारा पलट जाएगा आपका, क्योंकि वहां पे सिस्टम बिल्कुल उल्टा हो जाएगा और दिन में आपको नींद आएगी। ऐसा होता है कि नहीं, जिनको पता है कि इंटरनेशनल ट्रैवलिंग जो करते हैं वो समझ सकते हैं इस बात को, इसको जेट लॉग कहते हैं अंग्रेजी में। लेकिन प्रभुपाद के ऊपर इसका बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ता था, शुद्ध भक्तों के ऊपर काल का प्रभाव कभी नहीं पड़ता है। तो प्रभुपाद कहीं भी जाते थे, अगर वो 10 बजे से पहले होते किसी मंदिर में तो 10 बजे प्रभुपाद विश्राम में चले जाए, ये उनका हमेशा का शेड्यूल होता था। और रात को 12:30-1 बजे प्रभुपाद उठते थे। उठने के बाद फिर सामने इन आचार्यों की टीका होती थी संस्कृत भाषा में, और प्रभुपाद उन ग्रंथों को देखकर सामने रख के 3-4 किताबें रखते थे और प्रभुपाद उनको देखकर अनुवाद करते थे, हाथ से नहीं लिखते थे, सारा रिकॉर्डिंग करते थे। प्रभुपाद रिकॉर्डिंग करके उस शिष्य ले जाते थे, उसको सुनकर उसको ट्रांसक्राइब करते थे, किताब के रूप में छपा। तो प्रभुपाद ने वास्तव में किताबें सारी क्या है, बोली है, लिखी नहीं है, बोली है। तो जो आप पढ़ते हैं किताब प्रभुपाद की, तो ये भी हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद की किताब वास्तव में पढ़ रहे हैं तो हम प्रभुपाद से सीधा सुन रहे हैं, ये लाभ मिलता है। तो इसलिए हम जो भी सोचे ऊंचा सोचे, कभी छोटा नहीं सोचे, जैसे प्रभुपाद सोचे। इसलिए प्रभुपाद ने एक उदाहरण दिया कि अगर शिकार ही करना है तो गैंडे का शिकार करो। क्यों? क्योंकि इसलिए अगर आप गैंडे को मारते हो तभी आपका नाम होगा, और अगर गैंडे को नहीं मार पाते हैं तभी आपका गौरव बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि गैंडे को मारना आसान नहीं है। तो गैंडे को गैंडे के शिकार के लिए गया था, चूहा थोड़ा मारने गया था जंगल। तो प्रभुपाद ने कहा कि हमें कुछ भी सोचना है बड़ा सोचना चाहिए, जैसे हमारे गुरु महाराज देखिए वो छोटा मंदिर नहीं बनाया उन्होंने, बड़ा मंदिर बनाया है। तो हमेशा बड़ा सोचना चाहिए, जैसे भौतिकवादी जो है बाहर के लोग जो है दिन रात मेहनत करते हैं, आप लोग भी बाहर जॉब करते होंगे, बिजनेस करते होंगे, आपको पता है कि लोग कितना मेहनत करते हैं बाहर धन कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, सोसाइटी में स्टेटस बनाने के लिए दिन रात कितना लोगों को मेहनत करनी पड़ती है नहीं। तो इसी तरह से जो भक्त होते हैं भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनमें भी यही भावना रहती है कि हमें भी जो कर कृष्ण के लिए सब कुछ बड़ा करना है, छोटा नहीं करना है। तो इसलिए प्रभुपाद ने देखिए इतने कम समय में इतने बड़े बड़े कार्य किए। तो सोचना ही, बड़ा सोचना ही बहुत बड़ी बात है। इसलिए इस साल हमने फैसला किया है कि दिल्ली में हम लोग 2,00,000 गीता का वितरण करेंगे और इसकी छपाई भी हो चुकी है और ये किताबें आ भी चुकी है लगभग। तो ये 2,00,000 गीता का वितरण हमने प्रयास कर रहे हैं। साल पिछले साल दिल्ली मंदिर की तरफ से 1,50,000 गीता का वितरण हुआ था और विश्व में लगभग हमारे 550 केंद्र है। तो सभी मंदिरों में क्या होता है, प्रभुपाद ने प्रतियोगिता शुरू की, कॉम्पिटिशन, कि सब लोग क्या करेंगे, आपस में कॉम्पिटिशन करेंगे कि कौन कितना ज्यादा ग्रंथ बांटता है। तो पिछले 2 साल से आप सबको खुशी होगी सुनकर कि पिछले 2 साल से आपका जो दिल्ली मंदिर है ये नंबर 1 आया है, फर्स्ट आया है। और इसका कारण क्या है, इसका कारण स्वयं श्रील प्रभुपाद है, क्योंकि प्रभुपाद ने स्वयं ग्रंथों का वितरण जो है अगर वास्तव में कहीं किया तो दिल्ली में किया। प्रभुपाद वृंदावन से आते, भागवतम लिखते, वहां पर अंग्रेजी मतलब शुरू करने से पहले ही प्रभुपाद ने भागवतम अनुवाद करना शुरू कर दिया था। और प्रभुपाद दिल्ली आकर छिपीवाड़ा में रहते थे, चांदनी चौक में जहां पर छिपीवाड़ा जगह है, वहां गली के अंदर एक ऊपर एक कमरा है, वहां प्रभुपाद रहते थे। और चावड़ी बाजार से या नई सड़क, हाँ चावड़ी बाजार से प्रभुपाद कागज लेके आते थे खुद, और खुद किताब खुद पत्रिका के लिए लेख लिखते थे और प्रिंटर के पास जाते थे, उसको छपवाते थे, खुद उसकी एडिटिंग करते थे और खुद उसका वितरण करने जाते थे। कनॉट प्लेस में, पुरानी दिल्ली में कनॉट प्लेस में कॉफी हाउस था, वहां पर अभी भी है लेकिन दूसरा है, पहले एक पुराने जमाने में कॉफी हाउस था। तो वहां प्रभुपाद जाते और वहां अंदर जाके प्रभुपाद अपने ही किताबों को बांटने की कोशिश करते हैं। कभी कभी तो गर्मी में धूप के कारण प्रभुपाद बेहोश भी हो जाते। एक बार तो एक बैल लाकर उनको मार दिया, फिर भी उठ खड़े हुए, फिर भी प्रचार करते रहे। तो वो गए थे उनके पास, क्या नाम उनका, ये जय हरि डालमिया, तो डालमिया परिवार के सबसे जो पहले वाले थे उनके, जो सूर्य डालमिया के जो पिता है जिन्होंने ये जो कंपनी खोली थी, तो उनके पास प्रभुपाद गए थे डोनेशन के लिए कि मैं किताब छापूं भागवतम छापने के लिए। तो प्रभुपाद से उन्होंने बोला कि अगर आप चाहते हैं तो आपको मेरे गुरु महाराज से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो कौन थे, हनुमान प्रसाद पोद्दार थे गीता प्रेस के। तो उन्होंने कहा कि वो गोरखपुर में मिलेंगे, आप उनसे परमिशन लेके आइए। तो वो हनुमान प्रसाद पोद्दार के पास गए। हनुमान प्रसाद पोद्दार ने जब देखा, उन्होंने लिखा भागवतम में लिखा है, उन्होंने कहा कि आपको दिखाने की जरूरत ही नहीं है, मैं जानता हूं कि ये सब अच्छा ही होगा, आप जल्दी छपाइए इसको। तो प्रभुपाद से बड़ा अच्छा उनका संबंध था। तो प्रभुपाद दिल्ली आए और प्रभुपाद ने फिर ग्रंथ छपवाया, भागवतम छपवाया, प्रभुपाद खुद वितरण कर रहे थे दिल्ली में। और इस कारण से आपका दिल्ली शहर जो है बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली है, केवल इसलिए क्योंकि प्रभुपाद कनॉट प्लेस और पुरानी दिल्ली की सड़कों में प्रभुपाद स्वयं घूमे हैं अकेले। लेकिन उस समय प्रभुपाद के पास कोई भी नहीं था, प्रभुपाद के साथ कोई मंदिर नहीं था, कोई भक्त नहीं थे, धन भी नहीं था, अकेले सन्यासी वेश धारण किए हुए प्रभुपाद घूम रहे थे गलियों में सड़कों में। किस लिए, एक प्रभुपाद को लेकर पूरा श्रद्धा विश्वास थी कि एक ऐसा दिन आएगा जब इसी दिल्ली में एक बहुत बड़ा मंदिर बनेगा, है कि नहीं। और उन्होंने श्रेय अपने शिष्य को दिया है, सोलन गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को ये श्रेय दिया। तो ये हम देखते हैं कि पूरे विश्व भर में एक क्रांति लाए प्रभुपाद। और इसलिए प्रभुपाद ने जो भी सोचा वो बहुत ऊंचा सोचा। 69 साल की उम्र में, 69 ईयर्स के एज में प्रभुपाद विचार कर रहे हैं अमेरिका जाने के लिए। आप में से अगर कोई 70 साल की उम्र तक पहुंच गया हो या 60 साल की उम्र में हो, आप खुद आप सोचिए, अगर आपको अकेला जाना पड़ जाए अमेरिका और आप ठीक से इंग्लिश भी नहीं जानते, अमेरिकन एक्सेंट में भी नहीं बोल सकते आप, और आपके पास कोई धन नहीं है, कोई सहारा नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है अमेरिका में, और आपको कहे आप जाइए अमेरिका में जाके भगवद गीता का प्रचार करें, करेंगे आप ऐसे? कोई प्रभुपाल के वृंदावन छोड़कर अमेरिका गए, अकेले मालवाहक जहाज में गए, कार्गो शिप में गए? तो ये उनका था, निडरता थी प्रभुपाल की, डरते नहीं थे प्रभुपाल कभी। प्रभुपाल एक बार कलकत्ता में मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे, तो वहां पर एक विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है जिसकी ऊंचाई करीब 200 फुट है, बहुत बड़ा है वहां कलकत्ता में, बहुत बहुत बड़ा ही प्रचलित इलाका है वो। तो प्रभुपाल एक बार मॉर्निंग वॉक अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, तो प्रभुपाल ने कहा जब मैं छोटा था ना, कि मेरा हमेशा ये मन में रहता था कि हमेशा ऊपर जाऊं, हमेशा लीडर के रूप में था, और मैं यहां पर जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो मैं इसके ऊपर चढ़ गया था। प्रभुपाल कहते मैं इसके ऊपर चढ़ गया, तो उन्होंने कहा अच्छा प्रभुपाल आप ऊपर चढ़ गए थे, प्रभुपाल आप बहुत निडर हैं, आप तो बड़े निडर थे उस समय। प्रभुपाल ने क्या मतलब है कि आज भी मैं निडर हूं, क्या मैं 70 साल की उम्र में अकेला नहीं आया अमेरिका प्रचार करने के लिए? बोलते प्रभुपाद कहते हैं मैं अभी भी निडर हूं, मुझे किसी से डर नहीं है। तो इसलिए तो प्रभुपाद ने इस बात पर मोहर दिया कि हम जो भी सोचे, ऊंचा सोचे कम ना सोचे। एक भक्त हुए जिनका नाम है हरिनाम आनंद प्रभु, हमारे संस्था में, जिन्होंने लगभग 60,000 किताबों का वितरण किया अकेले एक साल के अंदर, और लगभग उन्होंने ये ग्रंथ क्या लक्ष्य प्राप्त कर लिया था, लेकिन एक हफ्ता रह गया था और उनको 4,200 किताबें और बांटनी थी एक हफ्ते के अंदर अकेले एक एक करके, क्योंकि विदेशों में कई बार वहां पर अकेले बांटना पड़ता है, एक एक करके जाना पड़ता है बांटने के लिए। तो उन्होंने आखिरी एक हफ्ते में, आखिरी दिन में, आखिरी दो दिन में उन्होंने अकेले 950 किताबें बांटी अकेले, और 60,000 किताबों को जो उनका टारगेट था उन्होंने पूरा किया। तो इस प्रकार ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जो हमेशा ऊंचा सोचते हैं। तो हमेशा हमें बिल्कुल ऐसा रहना चाहिए कि जो भी हम सोचें ऊंचा सोचें, कि ये नहीं कि हमें केवल एक गली में प्रचार करना है या किसी एक व्यक्ति को प्रचार करना है। हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि दिल्ली में क्या होना चाहिए, 1.5 करोड़ की आबादी है, तो कम से कम 1% लोग तो मंदिर में आके भक्त बने, मंदिर में आए, दर्शन के लिए आए, इस कार्यक्रम में आए, आपका ऑडिटोरियम छोटा पड़ जाएगा, है ना? आज तो छोटे से हॉल में हम सब इकट्ठे हो गए, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो 1.5 करोड़ की आबादी के हिसाब से हम तो 1% भी नहीं है यहाँ पर। तो हमें हमेशा ऊंचा सोचना चाहिए, ये प्रभुपाद ने बताया है। आगे चलिए, और इसके पीछे दर्शन क्या है, सिद्धांत क्या है? तो प्रभुपाद ने इन ग्रंथों को संकीर्तन क्यों बोला है? प्रभुपाद कहते थे जो भक्त बाहर प्रचार में जाते हैं उनको संकीर्तन भक्त बोला है। तो संकीर्तन जो है 64 भक्ति के अंग है, उसमें सबसे श्रेष्ठ भक्ति का जो अंग है, सबसे प्रभावशाली और सबसे शक्तिशाली, जो जिसका प्रभाव हमारी चेतना में जल्द पड़ता है, जिसे हम जल्द कृष्ण भावना भावित होते हैं, वो है नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन 64 भक्ति अंगों में सबसे श्रेष्ठ विधि मानी गई है, और ये जो भविष्यवाणी की गई भागवत में, कृष्ण वर्णम दुषा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेदशा, कि कलयुग में लोग क्या करेंगे, ऐसे भगवान की पूजा करेंगे जो अपने पार्षदों के साथ क्या करेंगे, संकीर्तन यज्ञ करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो क्षेत्र वहां प्रभु आज से 520 साल पहले आए, और उन्होंने क्या किया, नवदीप धाम मायापुर में उन्होंने पहली बार संकीर्तन शुरू किया अपने पार्षदों के साथ। तो ये इसमें एक शब्द देखिए, कृष्ण वर्णम, सबसे पहले एक शब्द आया है कृष्ण वर्णम। इस कृष्ण वर्णम शब्द का अर्थ है, वर्ण शब्द का कई अर्थ होते हैं, वर्ण शब्द का मतलब होता है जाति, जैसे वर्ण जाति नहीं, वर्ण वर्ण मतलब क्लास, जैसे वर्णाश्रम बोलते हैं ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये वर्ण है। इसी तरह से वर्ण का मतलब होता है रंग, रंग भी, रंग को भी वर्ण बोला जाता है, और वर्ण का अर्थ ये भी होता है बार बार किसी चीज को दोहराना, उसको भी वर्ण कहा जाता है। तो महाप्रभु बार बार कृष्ण के नामों का उच्चारण करते थे, और प्रभुपाद क्या कर रहे थे, प्रभुपाद क्या करते हैं, प्रभुपाद बार बार कृष्ण के नामों का उच्चारण करते हैं, किसमें, अपनी किताबों में, है कि नहीं? तो जो इन किताबों का वितरण करता है वो क्या कर रहा है, जो भी प्रभुपाद जी किताबों को बांट रहा है वो क्या कर रहा है, फिर वो संकीर्तन कर रहा है, क्योंकि कृष्ण के नाम जो उच्चारण हुए हैं प्रभुपाद जी के द्वारा, जैसे हमने पहले बताया कि प्रभुपाद ने ग्रंथ लिखे नहीं, बोले हैं, रिकॉर्डिंग किया है, तो यानी एक कीर्तन ही है एक तरह से। और इन जब किताबों का वितरण करते हैं तो क्या है, सारे भक्त लोग जब मिलकर किताबों का वितरण करते हैं तो ऐसे भक्तों को क्या कहा जाता है, संकीर्तन कहा जाता है। और इसका प्रभाव हमारी चेतना में बहुत तेजी से पहुंचता है और बहुत जल्दी हम लोग भक्ति में आगे बढ़ते हैं। अगर आप में से कितने लोग भक्ति में जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप सबको नाम संकीर्तन में भाग लेना पड़ेगा। यह है तरीका, सबसे आसान तरीका है। अब देखिए आगे चलिए। और तो प्रभुपाद ने कई चिट्ठियों में और अपने प्रवचनों में बात बताई कि प्रभुपाद ने के जो ग्रंथ है इनके मित्रों का वितरण करना ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। बिना किताबों के हमारे प्रचार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए जहां भी कार्यक्रम होता है हमारा, वहां पर हमारे ग्रंथों का वितरण होना चाहिए। क्योंकि देखिए क्या है, कई ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर उनके पास इमारत भी है, सब कुछ भी है, लेकिन उनके पास ग्रंथ नहीं है, सिद्धांत नहीं है उनके पास। क्योंकि जब तक ग्रंथ, जब तक सिद्धांत नहीं होगा तो हम लोग जो भी कुछ कार्य करेंगे वो केवल क्या है, काल्पनिक होगा, मनोकल्पना होगी। इसलिए शास्त्रों की आवश्यकता पड़ती है, सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है। तो इन ग्रंथों के आधार पर जब हम लोग भक्ति के कार्यों में लगते हैं तो हमें पता भी चलता है कि हम भक्ति ठीक तरह से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये भक्ति जो है वो भावुकता के कारण नहीं है, एक बहुत गहरा सिद्धांत है। आपसे प्रश्न पूछते हैं, आप में से कितने लोगों ने इस संस्था में आने से पहले भगवद गीता पढ़ी? दो लोग आप में से। आप में से कितने लोग हैं जो संस्था में आने से पहले ये जानते थे कि कृष्ण ही परम भगवान है? पांच छह लोग बस। और आप में से कितने लोग जानते थे कि भगवद गीता का वास्तव में मूल सार भक्ति ही है? सिर्फ दो लोग तीन लोग बस। और आप में से आप कितने लोग जानते हैं, आप अब कितने लोग जानते हैं कि भगवद गीता का सार भक्ति है? आप में से कितने लोग जानते हैं कि कृष्ण ही परम भगवान है? ये आपको किसने बताया? प्रभुपाद जी के ग्रंथों ने बताया। क्योंकि भगवान गीता में यही बता रहे हैं, दसवें अध्याय भगवान क्या कह रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भावा सर्व। मैं ही आध्यात्मिक और भौतिक जगत का कारण हूं, भगवान कह रहे हैं, भगवान स्वयं बता रहे। मत परत्र न अन्य किंचित अस्ति धनंजय, मेरे से बड़ा कोई सत्य नहीं है, भगवान कह रहे गीता में। लेकिन इस बात पर कौन जोर दे रहा है? जो भी गीता के ऊपर लेख लिखते हैं, टीकाएं लगते हैं, गीता छापते हैं, कोई नहीं बताता है कि कृष्ण परम भगवान है। क्योंकि वो खुद का ही नाम आगे रखना चाहते हैं। कई बड़े बड़े राजनेता उन्होंने गीता के ऊपर टीका लिखी, उन्होंने लिखा कि हम लोग ऐसे भगवान को नहीं मानते जिन्होंने हिंसा के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कृष्ण को ही हटा दिया गीता से। बिल्कुल गलत बात कही है। हाँ तो वही हम कह रहे हैं कि गलत है। तो ये कई दुख लगता है ना। तो ये बिल्कुल कैसे कैसे टीकाएं, देखिए व्याख्या है। कोई कहता है कि पांच पांडव जो है पांच इंद्रिया है और कुरुक्षेत्र जो है आपका शरीर है। ऐसी ऐसी व्याख्या है बिल्कुल, जिस इनका कोई हक नहीं है, जिनका कोई अधिकार नहीं है भगवदगीता पर, वो भगवदगीता पर व्याख्या लगता है। क्योंकि भगवदगीता केवल भक्तों का विषय है और किसी का नहीं है। भक्ति वास्तव में गीता को समझ सकते हैं। स्वयं भगवान गीता में कह रहे हैं, भक्त्या माम अभी जानाति यावन याश्चास्मि तत्वतः। कोई मुझे जान सकता है तो केवल भक्ति के माध्यम से जान सकता है, और कोई तरीका है नहीं। तो आप सोच सकते हैं कि प्रभुपाद जी की जो गीता है जिसका वितरण करते हैं, और अन्य प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ है जिसका वितरण करते हैं, इन्हीं के कारण जो है विश्व में लोग भक्त बने हैं। इससे पहले कई लोग गए, प्रभुपाद के जाने से पहले अमेरिका में पहले से भगवद गीता थी इंग्लिश में। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद ने पहली बार लिखा अंग्रेजी में, अमेरिका में पहले से इंग्लिश में बहुत सारे वहां पर एडिशन थे। लेकिन उन किताबों को पढ़कर कोई भी भक्त नहीं बना, एक भक्त नहीं बना वहां पर विदेशों में। लेकिन प्रभुपाद जी की किताब को पढ़कर सबसे ज्यादा भक्त अगर बने हैं इस्कॉन में, इस संस्था में। प्रभुपाद ने कई ग्रंथ लिखे और कई ग्रंथों से भक्त बने हैं, लेकिन एक ग्रंथ है जिससे सबसे ज्यादा भक्त बने हैं और वो है भगवद गीता। भगवद गीता को पढ़कर। तो इतने देखिए, इसलिए आज के समय में भगवद गीता प्रभुपाद की जो है सबसे ज्यादा जो है वितरित भी हो रही है, प्रकाशित भी हो रही है, और भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट जो है विश्व का सबसे बड़ा जो है पब्लिशिंग एजेंसी है, और उसके माध्यम से सबसे ज्यादा किताबों का वितरण हो रहा है विश्व स्तर पर। तो ये देखिए यहां पर ग्रंथ के बारे में प्रभुपाद और कुछ बातें बता रहे हैं। जितने अधिक ये ग्रंथ पढ़े जाएंगे, वितरित किए जाएंगे, उतना ही पूरे जगत के लिए क्या होगा, मंगल होगा। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो ग्रंथ है, किताबें हैं, हमसे सबसे हमारा महत्वपूर्ण अस्त्र है, और जितने इन ग्रंथों को हम बांटेंगे, वितरित करेंगे, तो क्या होगा, पूरे संसार का उद्धार होगा। तो ये कार्यक्रम जो है सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो प्रभुपाद अपने शिष्य को लिख रहे हैं कि कृष्ण आपको आशीर्वाद दे ताकि आप इन ग्रंथों का और अधिक से अधिक वितरित करें। ये उन्होंने जयद्वत महाराज को चिट्ठी लिखी, प्रभुपाद ने 1972 में। ये महाराज अभी आए हुए हैं मंदिर में, कहीं को चिट्ठी लिखी, शाम को महाराज पहुंचे आज। तो क्योंकि प्रभुपाद जी के ग्रंथों को जब छप जाती थी किताबें, तो उन किताबों का एडिटिंग जो है जयद्वत महाराज ने किया था। तो इन किताबों का इतना वितरण जो है किया जाता था विदेश में, आज भी किया जा रहा है। बढ़िया, प्रभुपाद के जो भी हमने आज सफलता प्राप्त की है इस आंदोलन में, उसका केवल एक ही रहस्य है, वो क्या है, ग्रंथों का वितरण। विदेशों में तो आप मानेंगे 90% लोग जो भक्त बने हैं वो पुस्तक वितरण से बने हैं और पुस्तकों के अध्ययन से बने हैं। भारत में शायद इतनी मात्रा में ना हो, लेकिन विदेशों में तो 90% भक्त जो बने हैं वो ग्रंथों को पढ़ने से बने। तो प्रभुपाद कहते हैं कि पुस्तक वितरण भी क्या है, जप है। ये हमने बात बताई थी कि प्रभुपाद ने किताब कह रहे हैं कि मैंने लिखा नहीं, मैंने क्या किया है, बोला है। तो ये कीर्तन है वास्तव में। तो जो भी पढ़ेगा उसका क्या होगा, उसको सीधा लाभ मिलेगा, पढ़ के ही वो भक्त बन जाएगा। ऐसा कभी आपने देखा इतिहास में कि कोई किताब पढ़ के भक्त बन रहा हो? किताब पढ़ी और माला शुरू कर दी। लेकिन प्रभुपाद जी की किताबों से ऐसे विश्व के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर मुसलमान देशों में भी, एक ऐसा मुसलमान देश है वहां पर किसी को प्रभुपाद की किताब प्राप्त हुई, शायद कौन सी किताब थी पता नहीं, वो उर्दू भाषा में थी, और वो पढ़कर वो भक्त बनने लगा, और बाद में जब वो संस्था के संपर्क में आया तो और भी सारी किताबें ले गया वो। तो इस तरह से कई ऐसे उदाहरण है। आगे चलिए, प्रभुपाद कहते हैं आप क्या करना है, आपको क्या करना है, केवल जो किताबें लिखी गई है उनको आप पढ़ें और इसका वितरण करें, और क्या होगा, आपका प्रचार जो है वो सफल होगा। बहुत आसान है। प्रभुपाद कहते हैं कि संकीर्तन के भक्त जो है बहुत प्रिय है कृष्ण के लिए, और अगर कृष्ण को हम आकर्षित करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कृष्ण हमसे प्रभावित हो हमारी सेवा से, तो सबसे आसान तरीका क्या है, उनका प्रचार करना और ग्रंथों का वितरण करना। इससे क्या होता है, जब कृष्ण देखते हैं कि भक्त लोग कष्ट उठा रहे हैं मेरे संदेश को पहुंचाने के लिए, तो भगवान बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं ऐसे भक्तों से। इसलिए गीता में भगवान ने क्या बोला है, या इदम परमं भूयम मद भक्तेषु अभिदास्यति भक्ति मयि पराम कृता वाम एव शशि संशया। भगवान कह रहे हैं जो इस ग्रंथ का दिव्य ज्ञान का प्रचार करता है वो सबसे प्रिय सेवक है, और ना ऐसे कोई प्रिय सेवक होगा। तो सबसे आसान तरीका है, भगवान कृष्ण भी उद्धव जी को बता रहे हैं भागवत में कि गुरु दक्षिणा क्या है, सबसे उत्तम दक्षिणा क्या है गुरु के लिए, दक्षिणा ज्ञान संदेश, जो ज्ञान प्राप्त किया है गुरु से उस ज्ञान का वितरण करना आगे, ये है वास्तव में सबसे बड़ी दक्षिणा। ये नहीं दक्षिणा आप धन दे दे या घर बना के दे दे, गाड़ी लेके देते, वो नहीं। सबसे बड़ी दक्षिणा क्या है कि ग्रंथ या ज्ञान जो प्राप्त हुआ है गुरु के माध्यम से, उस ज्ञान को आगे पहुंचाना, ये सबसे बड़ी सेवा है, दक्षिणा है। आगे चलिए, तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि परिणाम बता रहा है कि पुस्तक वितरण की कोई सीमा नहीं है। ये नहीं कि आप बहुत किताबें बांट ली, आप शायद किताबों को कोई लेगा नहीं या किताब साथ बटेंगे नहीं, ऐसा नहीं। किताबों को बांटने के लिए कोई सीमा नहीं है, प्रभुपाद कह रहे हैं कि अभी भी हम देख रहे हैं, पिछले साल हम 1.5 लाख बोला, इस साल 2 लाख बोल रहे हैं, हर साल हम संख्या बढ़ा ही रहे हैं, घटाया कभी हमने संख्या, बताइए, इतने सालों में कभी नहीं घटाया हमने, क्योंकि हम ये देख रहे हैं अभी कितने लोग हैं जिनके पास प्रभुपाद जी की किताबें पहुंची नहीं। और आगे बढ़ी, प्रभुपाद कहते प्रचार का मतलब ही है पुस्तक वितरण। प्रभुपाद कहते इसमें कोई शक नहीं है कि पुस्तक वितरण जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए कोई भी सेवा हम करें, विग्रह की सेवा करें, प्रसाद वितरण करें, हाउस प्रोग्राम करें, भक्ति वृक्ष का कार्यक्रम करें, या कहिए जो सोमवार का कार्यक्रम होता है वो करें, किसी भी कार्यक्रम में हमें ध्यान रखना है कि साथ में ग्रंथों का वितरण जरूर होना चाहिए। आपको ध्यान रखना चाहिए अगली बार, हर बार क्या करें, यहाँ पे बुक स्टॉल जरूर होना चाहिए आपके पास, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति आते, नए लोग जुड़ते हैं, उनको साथ में किताब मिलनी चाहिए। क्योंकि प्रभुपाद बहुत नाराज होते थे जब वो देखते थे कि हम कार्यक्रम तो कर रहे हैं लेकिन वहां कोई किताब ही हमने नहीं रखी। ये किताब जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जो प्रवचन दे रहे हैं हो सकता है कि आप जाने का सब भूल जाओ, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं अगर ये किताब पढ़ेंगे तो पूरी संभावना है कि उसका पूरा जीवन बदल जाएगा। चलिए आगे, प्रभुपाद कहते हैं जिस तरह से युद्ध की भूमि में क्या होता है, युद्ध के समय में हवाई जहाज से बॉम्ब फेंके जाते हैं, है कि नहीं, तो इसी तरह से हम लोग भी बॉम्ब फेंक रहे हैं। जो आतंकवादी लोग हैं वो बॉम्ब फेंकते हैं हर जगह, और भक्त क्या कहते हैं, भक्तों के पास भी बॉम्ब है। कौन सा बॉम्ब है जानते हैं? प्रभुपाद जी के ग्रंथ। तो हमें क्या करना है, जो बेचारे माया में फंसे हुए लोग हैं उनको क्या, उनके ऊपर क्या डालना है, ये बॉम्ब डालना है, ग्रंथों का बॉम्ब डालना है, और इससे क्या होगा, माया का प्रभाव हटेगा और वो सब सेवा में जुड़ेंगे। चलिए आगे, ये कुछ यहाँ पर प्रैक्टिकल बातें बताई गई हैं कैसे कैसे हम लोग ग्रंथों को बांट सकते हैं, क्योंकि कई लोग पूछे कि हमें तो पता ही नहीं कैसे बांटना है। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने बताया कि किताबों का महत्व, लेकिन बांटे कैसे हम लोग, तो कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दिए हैं हमने। जैसे याद दिया है कि रथयात्रा जैसे उत्सव होता है, जन्माष्टमी में भी हमारा कई काफ़ी किताबें बटी थी, लुधियाना रथयात्रा में ग्रंथ का अवतरण हुआ बहुत तादाद में। तो जब उत्सव आते हैं तो हमें उत्साहित होकर उस समय ग्रंथों को बांटने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उस समय लोग वैसे ही लोग भावुक होते हैं और मंदिरों में दर्शन के लिए आते हैं, तो हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि इन सबको ग्रंथ मिले। और दूसरा, मीडिया के माध्यम से भी हम लोग प्रचार कर सकते हैं और स्वयं बतला सकते हैं भगवद्गीता के बारे में, ग्रंथों के बारे में। तो आपका अगर कॉन्टैक्ट्स हो मीडिया वालों से तो आप उनको बुला सकते हैं और हम ग्रंथों के बारे में बता सकते हैं, जो अपने चैनल्स पर दिखा सकते हैं, इससे भी प्रचार होगा। और तीसरा ये कि जो भक्त लोग हैं वो आपस में मिले, जो प्रचार करते हैं, पुस्तक वितरण करते हैं, और जब जब समय आता है ग्रंथों का वितरण होता है, उनको उत्साह बढ़ाने के लिए उनको पुरस्कार दिया जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए, ताकि और आगे बढ़कर और भी किताबें बांटे। आगे चले, और भक्त लोग जो बुक स्टॉल भी लगा सकते हैं, बुक स्टॉल लगा सकते हैं हम कहाँ पर, मंदिरों में लगा सकते हैं, मंदिर में बहुत सारे मंदिर हैं दिल्ली में, वहाँ बुक स्टॉल आप लगा सकते हैं, रेलवे स्टेशन में, एयरपोर्ट्स में, है ना, और बस टर्मिनल्स में, बहुत सारी जगह है जहाँ पे ग्रंथों का वितरण हो सकता है। और उसके बाद ये बिल बोर्ड्स का मतलब क्या है, जैसे होर्डिंग्स वगैरह हम लोग अभी होर्डिंग लगा देंगे कुछ दिन, दो दिन, एक दो दिन में, जिसमें भगवद्गीता के बारे में कई होर्डिंग्स लगे हुए हैं बाहर, आपने देखा है दिल्ली में, तो भगवद्गीता के भी होर्डिंग्स होने चाहिए। तो अगर आपके किसी के पास कॉन्टैक्ट है तो दिल्ली में हम 50-100 होर्डिंग भी लगवा सकते हैं भगवद्गीता के ऊपर, क्योंकि दिसंबर के महीने में ही भगवान कृष्ण ने गीता का संदेश दिया था अर्जुन को मोक्षदा एकादशी के दिन, तो इस साल 20 दिसंबर को ये डेट पड़ रहा है। और उसके बाद एक हम लोगों ने सोचा है कि साथ में आगे चले, एक हम लोग सोच रहे हैं कि भगवद्गीता के ऊपर हम लोग कॉन्टेस्ट भी कर रहे हैं स्कूल्स के बच्चों के लिए, जो बच्चे स्कूल से पढ़ रहे हैं उनके लिए भगवद्गीता कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, और 40 जो स्कूल है उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है दक्षिण दिल्ली में, जो इस कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं। तो हम भगवद्गीता से उनको क्वेश्चन दे रहे हैं जिसके आंसर्स वो लिख के लाएंगे, जिसको चेक करके हम लोग क्या करेंगे, उनको प्राइजेस और सर्टिफिकेट देंगे किस दिन, गीता जयंती के दिन। वो सारे बच्चे भी आएंगे तो उनके परिवार वाले भी आएंगे, इस तरह से वो भी प्रोग्राम्स में जुड़ेंगे। तो इस तरह से इस साल हम लोग सोच रहे करने के लिए, और 40 स्कूल्स ऑलरेडी हमने टच किए हैं जो तैयार हैं इस कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए। पिछली बार नोएडा टेम्पल ने किया था बड़ा अच्छा, और वहाँ भी करीब 200-250 बच्चों ने भाग लिया था। और यहाँ पर भी है कि जो ग्रंथ बांट रहे हैं भक्त लोग, उनके स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना चाहिए, और साथ में जैसे कई बार लैमिनेशन देते हैं किसी को, अगरबत्ती खरीदते हैं तो उसके साथ भी किताबें दी जा सकती हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब हम लोग काफी मात्रा में ग्रंथ देते हैं तो साथ में हमें फॉलोअप भी करना चाहिए। फॉलोअप का मतलब जिसको किताब दी है उसको फोन भी करना चाहिए कि आप किताब पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं कि नहीं, आप हमारे प्रोग्राम्स में आइए हमारा, क्योंकि उद्देश्य क्या है ग्रंथ को बांटने का, कि पढ़कर लोग भक्त बने, इसलिए प्रयास करना चाहिए कि हम उसमें कुछ एड्रेस छोड़े अपना, है ना, और कार्ड छोड़े, ताकि वो हमें फोन कर सके क्योंकि कई बार अनजान लोगों को भी हम देते हैं किताब, तो उनका एड्रेस ले सकते हैं, बाद में अगले महीने हम लोग सबको फॉलो करें और अपने मंडे के प्रोग्राम में या किसी भी प्रोग्राम में उनको इन्वाइट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। और स्पॉन्सरशिप फॉर्म भी हमने तैयार किए हुए हैं, ये दिखाइए, ये स्पॉन्सरशिप फॉर्म है जो हमने छापे हुए हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जेल्स में जाते हैं, महीने में एक बार वहाँ प्रोग्राम भी होता है। पिछली बार तिहाड़ जेल में भी हमने भगवद्गीता बांटी थी, और तिहाड़ है यहाँ पे, गाजियाबाद में जेल है, वहाँ पे हमें स्पेशल परमिशन मिला हुआ है, जहाँ पे जाके प्रोग्राम भी कर सकते हैं। और उन कैदियों को क्या देते हैं, गीता देते हैं। तो जेल में रहकर वो क्या करते हैं, गीता पढ़ते हैं। तो ये स्पॉन्सरशिप फॉर्म ने छापे हुए हैं, इसमें कई लोग हैं जो ग्रंथ नहीं लेंगे अपने लिए, वो बोलेंगे हमारे पास पहले से गीता है, ये लोगों का भाला रहता है। तो हम बोल सकते हैं आपके पास गीता है, लेकिन कई लोगों के पास नहीं है। तो अगर आप स्पॉन्सर करते हैं तो आपके बिहाफ पे हम लोग ग्रंथ बांट सकते हैं। तो ये स्पॉन्सरशिप फॉर्म इस बार छपवाया हमने, इसमें 100 गीता की क्वांटिटी से शुरू हो रहा है, एक फॉर्म ऐसा है, दूसरा है जिसमें 500 गीता से शुरू हो रहा है। तो ये आप फॉर्म ले सकते हैं विशाल प्रभु से प्रोग्राम के बाद। और साथ में बुक डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे भक्त लोग, कुछ भक्त लोग जैसे मंदिर में भक्त हैं, वो डेली जाते हैं, सिर्फ दिसंबर के महीने में नहीं, पूरे साल हर रोज जाते हैं और दिल्ली की सड़कों में सिग्नल्स पे जाकर ग्रंथ फाड़ते हैं। बहुत मेहनत का काम है, बाहर धुआं है, गर्मी है, बहुत कुछ तकलीफें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये सारे भक्त लोग इतना कठिनाई सहन करते हैं और क्या करते हैं, प्रभुपाद जी किताबों को बांटते हैं। और इसके बाद हमने जैसे बताया कि जेल्स, हॉस्पिटल्स में और ओल्ड एज होम्स हैं, या फिर कंपनीज में दिवाली गिफ्ट देते हैं, नए साल का गिफ्ट देते हैं, तो उनको हम लोग उत्साहित कर सकते हैं कि नए साल के उपलक्ष्य में आप क्या दीजिए, गीता दीजिए। जैसे पिछली बार एक दुकान है, साड़ी की दुकान है किसी की, तो उसने क्या किया, 1000 गीता ली, और उन्होंने क्या किया, हर साड़ी के साथ उन्होंने नए साल में एक गीता गिफ्ट मिले। तो इस तरह से हम लोगों को सुझाव दे सकते हैं, उसका अच्छा पैकिंग दिखा के, गिफ्ट पैक करके दिखा के बता सकते हैं कि आप इनको गिफ्ट के रूप में दीजिए। तो इस प्रकार भी लोगों को गीता दी जा सकती है और इस प्रकार स्पॉन्सर्स कराए जा सकते हैं। और साथ में वर्ल्ड संकीर्तन स्कोर, मतलब ये है कि हमारे जितने भी जो आप वितरित करेंगे, ये सारे स्कोर भेजे जाते हैं, अमेरिका भेजे जाते हैं लॉस एंजलिस, और वो उनके पास पूरे विश्व भर के जितने मंदिर हैं वो सब अपने अपने स्कोर भेजते हैं कि हमने दिसंबर के महीने में पूरे साल में, पूरे साल भर, हर महीने भेजते हैं वैसे स्कोर हम लोग। और इस साल अभी तक हमारा मंदिर जो है दूसरे नंबर में है, अभी तक जो है इस साल 2007 में भी अभी तक दूसरे नंबर में, पहले नंबर में मायापुर चल रहा है, मायापुर में। लेकिन उनके पास लगभग 100 भक्त हैं मंदिर के अंदर ही जो ग्रंथ बांटते हैं, उनके 6 बसें उनके पास जो दूर दूर जाते हैं वो लोग ग्रंथ बांटने के लिए। तो वो लोग हमसे अभी एक नंबर से आगे निकले हुए हैं, मतलब एक नंबर पे है, हम दूसरे नंबर पे हैं। तो लेकिन इसलिए हम लोग भी जो है उत्साहित है, इसलिए हम लोग 2 लाख गीता का हमने इस बार टारगेट लिया है कि 2 लाख गीता का वितरण हो। यह प्रार्थना करते हैं राधा पार्षदी से, प्रभुपाद से। तो प्रभुपाद क्या करें, काइंडली हेल्प मी, दिस इज माय रिक्वेस्ट, प्रिंट एज मेनी बुक्स इन एज मेनी लैंग्वेजेस एंड डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द होल वर्ल्ड, देन कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। प्रभुपाद कह रहे हैं कि अधिक से अधिक ग्रंथों को छापो, इसका वितरण करो, ये मेरी प्रार्थना है, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्रभुपाद कह रहे हैं। तो क्या होगा, इनके वितरण करने से ये कृष्ण भावना का आंदोलन अपने आप ही बढ़ेगा, ये हमारा विश्वास होना चाहिए। तो प्रभुपाद ने ग्रंथों के वितरण पर, ग्रंथों के अध्ययन पर बहुत जोर दिया, इसलिए आप सबसे भी प्रार्थना है कि आप इस बार आप सब मिलकर, एक साथ मिलकर उत्साहित होकर ग्रंथ बांटे। इस बार हमें पता चला कि कंग्रीगेशन ने, केवल आप नहीं, डरिए मत, सहस्त्र बताया, पूरे कंग्रीगेशन जो दिल्ली में हमारे, ईस्ट दिल्ली में भी है, और फिर उसके बाद कुछ साउथ दिल्ली में है, कुछ अलग और गुड़गांव में भी है, फरीदाबाद में भी है, फरीदाबाद के भक्तों ने, कंग्रीगेशन के डिवोटी से 25,000 गीता प्लेज किया है, 25,000 गीता बांटने वाले हैं। पिछले साल वहां के कंग्रीगेशन ने 20,000 गीता बांटी थी, तो इस बार और ज्यादा उत्साहित है, वो 25,000 गीता बांटना चाहते हैं। और इस तरह फिर और गुड़गांव में भी, और उसके बाद ईस्ट दिल्ली में भी 4 जगह पे प्रोग्राम चल रहे हैं। वह एक छोटा सा प्रोग्राम है, मानेंगे नहीं, उसमें केवल आते हैं 40 या 50 भक्त, हम खुद गए थे उस प्रोग्राम में, और सेमिनार के बाद वहां भक्तों ने प्लेज किया 17,000 गीता प्लेज की, 17,000 गीता प्लेज की केवल एक ही प्रोग्राम में, और वहां लोग कितने बैठे थे, 40 से 50 लोग बैठे थे, लेकिन उनमें इतना उत्साह है, वो इनके साथ है, विचित्र कृष्ण प्रभु के साथ है। और दो कार्यक्रम और चल रहे हैं, और एक और कार्यक्रम है वहां उन्होंने 10,000 गीता प्लेज किए, और उसके अलावा गुड़गांव में भी कई जगह पर, विवेक विहार में भी हमारे जहाँ प्रोग्राम चल रहे हैं उन्होंने भी काफी मात्रा में प्लेज किया है, और पंजाबी बाग मंदिर ने, इस्कॉन पंजाबी बाग जो हमारे साथ कॉम्पिटिशन में लगा हुआ है, वो भी 1.5 लाख गीता वितरण करना चाहते हैं इस बार, 1.5 लाख गीता बांटना चाहते हैं। पिछले साल उन्होंने भी 1,12,000 गीता बांटी थी, तो वो भी बड़े उत्साहित है। मंदिर देखने में छोटा है लेकिन वहाँ भक्त बड़े उत्साहित है, तो ये बड़ा मंदिर है। बड़ा मंदिर का मतलब सब कुछ बड़ा होना चाहिए, नहीं आप जैसे मायापुर धाम है वहां सब कुछ बड़ा है, मंदिर में करीब 500 ब्रह्मचारी रहते हैं और टोटल वहां करीब 800 भक्त हैं, 300 ग्रस्त भक्त हैं और 500 ब्रह्मचारी हैं जो वहीं पर अगर सेवा करते हैं, और उनके पास करीब 450 भक्ति वृक्ष ग्रुप है, लावाटा ग्रुप है पूरे बंगाल में, मायापुर से जो मंदिर से जुड़े हैं, यहाँ कितने हैं 40 से 50 है दिल्ली में, उनके पास 450 भक्ति वृक्ष ग्रुप है। और इस बार जो हरिनाम हुआ था, वर्ल्ड होली नेम डे हुआ था सितंबर में, तो जानते हैं मायापुर में कितने भक्तों ने भाग लिया हरिनाम में, 7,000 भक्तों ने भाग लिया, जो कि मायापुर से भी थे, कैलकाटा भी से भी थे और कई एरिया से आए थे। तो सब कुछ बड़ा है वहां पर, मंदिर भी बड़ा है, भक्तों की संख्या भी बड़ी है, प्रसाद भी बहुत तादाद में वितरित होता है रोज, तो सब कुछ वहां पर बड़ा कार्य किया जाता है। तो इसी तरह से हमें भी बड़ा सोचना चाहिए, भगवान के लिए जितना हम बड़ा सोचेंगे कृष्ण भी हमारे लिए उतना ही बड़ा सोचेंगे, है ना। हम कृष्ण के लिए छोटा सोचेंगे कि हाँ हमारे घर में मंदिर है, कहाँ है आपका मंदिर, नजर तो नहीं आ रहा, दिखाता आपको पलंग के पास आइए, वो देखिए नीचे एक द्रास बना होगा, द्रास कटर के नीचे वो द्रास खुलेगी, उसमें दिखाई देगी ठाकुर जी बैठे लड्डू गोपाल, उनको हमने छुप के रखा हुआ है, छुपा के रखा हुआ है ना। और हमारे लिए बड़े बड़े कमरे हैं, विशाल विशाल घर है सब कुछ भगवान का, लेकिन उनके लिए हम जगा देते हैं इतने से। इसी तरह हमें बड़ा सोचना है, ऊंचा सोचना है। तो आप सब जो है बहुत ही समर्पित लोग हैं, आप लोग समय निकालते हैं, आप लोग बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, हमें बड़ी खुशी होती है कि आप लोग फिर भी समय निकाल कर आते हैं, ठंड का मौसम भी है अभी, तो इसलिए इसके बावजूद भी आप लोग उत्साहित रहते हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन साथ में देखिए, जब हम सेवा करेंगे तभी हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, है ना, क्योंकि जब सेवा में जुड़ेंगे। लेकिन ये किसके लिए कर रहे हैं कोई पूछ सकता है, हाँ किसके लिए कर रहे हैं बताइए, भगवान के लिए कर रहे हैं ना, कृष्ण के लिए कर रहे हैं, है ना, लाभ मेरे लिए कर रहे हैं, लाभ अपने लिए कर रहे हैं। और हमारा अपना क्या स्वार्थ होना चाहिए, क्या स्वार्थ होना चाहिए, क्योंकि इन ग्रंथों को बांटने से भगवान प्रसन्न होंगे, उनके शुद्ध भक्त प्रसन्न होंगे, और वो जो प्रसन्न होंगे तो हम लोग भक्ति में अपने आप आगे बढ़ जाएंगे, और जैसे ही खुश होंगे आप देखेंगे आपकी भक्ति आगे बढ़ रही है ना। जैसे मैंने बताया भक्ति और ठाकुर, देखिए जब आंदोलन भी खड़ा नहीं हुआ था, अकेले संघर्ष कर रहे थे, जब कोई संस्था नहीं थी, कोई भक्त नहीं थे, वो अकेले बिल्कुल प्रचार कर रहे थे, इतना बड़ा परिवार था उनके, उसके बावजूद भी प्रचार कर रहे थे, और उन्होंने पूरे बंगाल में उस समय करीब 500 नामहट कार्यक्रम शुरू किए थे, भक्ति ठाकुर ने अकेले, कोई मंदिर नहीं था, कुछ नहीं था। तो इस हिसाब से हम सोच सकते हैं कि हमारे परंपरा में प्रभुपाद कहते थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज आवर फैमिली बिजनेस, तो ये हमारे परंपरा का ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है पुस्तक वितरण। तो आप सब कृपा करके उत्साहित होकर से जुड़िए, और इस बार देखिए हमारे नित्य किशोर प्रो है जिनका केमिस्ट शॉप है इनका, ये पहले यहाँ पर बंगाली मार्केट में था, अभी इनका कहाँ पे, नोएडा में, गाजियाबाद में, आप उनका भी वहाँ शॉप है, इनके फादर का भी एक है वहाँ बंगाली मार्केट में। तो पिछली बार इन्होंने 10,000 गीता बांटी थी खुद अपने हाथों से, ताली बजाई इनके लिए। ऐसे कई भक्त हैं जिन्होंने यहाँ पर बहुत सारे ग्रंथ बांटे, अकेले ही बांटे 10,000 गीता, है ना। तो हम आपसे अभी प्रार्थना करते हैं कि आप उत्साहित होकर आज प्लेज करें, जैसे नित्यकेश्वर प्रभु बैठे हैं, उन्होंने इस बार भी प्लेज किया है कि कम से कम वो 10,000 गीता का वितरण करेंगे, पिछले साल जितना किया है, ताली बजाई अरे बहुत। हमारे विशाल प्रो है, इन्होंने प्लेज किया है कि कम से 5,000 गीता का वितरण करेंगे इस बार, अरे बहुत, ताली जोर से बजाइए। अब आप भी आगे बढ़िए, आप बताइए, आप हमें से एक एक करके बताएं, और आप खुद ही आप खड़े होकर बोलिए
इस साल प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए, देखिए दिल्ली में कई जगह पर भक्त लोग बांट रहे हैं, कंग्रेगेशन डिवोटीज के बांट रहे हैं, मंदिर के भक्त बांट रहे हैं, सब भक्त लोग मिलकर बांटे, हम सब मिलकर करेंगे कार्य। प्रभुपाद की किताबों को बांटना है कि नहीं बांटना है? आप में से कितने लोग तैयार है पुस्तक वितरण के लिए? बस बाकी लोग तैयार नहीं है। अच्छा चलिए, जो तैयार है पहले उनसे हम लोग करवाते हैं, बाकी लोगों को हम खुद ही देंगे ऑफर, ठीक है। जैसे इसलिए मैं क्या किया था, लगभग सबने कर दिया था, लेकिन जो कुछ लोग बच गए थे उनको हमने कहा कि आप एक एक कार्टन तो करिए, उस पर 30 गीता होती है, यानी कि 30 दिन में आपको केवल 30 गीता बांटने, वो तो ज्यादा नहीं है। तो इसका हिंदी का हमने कॉस्ट इस बार रिड्यूस कर दिया है, गीता जयंती के उपलक्ष्य में हिंदी में 75 में है, इंग्लिश में 100 में है, इसमें हमारा कोई प्रॉफिट नहीं है। बेसिकली हम लोग केवल प्रिंटिंग कॉस्ट कवर करते हैं, गीता जयंती के उपलक्ष्य में हम चाहते हैं अधिक से अधिक लोगों के पास ग्रंथ जाए। वास्तव में ग्रंथों का प्रचार प्रसार करना क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य हमारे लिए।